बोरखा उन्नीस रबीउल आखिर शरीफ 1426 हिजरी मुताबिक 27 मई सन 2005 ईस्वी, 28वां पारा सूरह मुमतहना शरीफ आयत नंबर 7। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، जब रुकेंगे तो हुन ना नहीं पढ़ेंगे, हुन फम तहिनू हुन الله أعلم بإيمانهن. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. وليسألوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنون المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله،
على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور آمنت بالله صدق الله العظيم
अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर दें तो कुरान पाक अच्छा पढ़ेंगे। ये तिलावत करते हैं हम इसीलिए करते हैं इतने मतलब मेहनत से ताकि कुछ तो आप लोग की तो कर लें। आप लोग अपने ही तर्ज पर पढ़ने के आदि अल्लाह की पनाह चाहता हूं मैं शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। बात पूरा पहले वाले दर्स की दिमाग में होगी तो ये बात आसान हो जाएगी। सूरह मुमतहना का बैकग्राउंड हम बता चुके थे कि ये फतह मक्का से पहले उतरी है। हजरत हाकिब इबन अबी बलताआ का वाकया भी सुना दिया था जो उन्होंने खत लिखा था कुरैश मक्का को। फिर शुरू की इसकी आयत में हजरत हातिब बिन अबी बलताआ के इस वाकये के बाद अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमा दिया कि कुफ्फारो मुशरिकीन से कोई मवालात ताल्लुक मोहब्बत आपस में एक दूसरे के साथ रखना ये मुसलमानों ये तुम्हारे लिए बड़ा नुकसानदेह है। वो तुम्हें पाए तो तुमको कत्ल कर दें, तुम्हें गालियां दें, तुमको चाहते ही कि घुमा करके तुमको फिर कुफर में डाल दें। तो ये मवालात और मोहब्बत एक दूसरे के साथ ये बिल्कुल दूसरे नहीं थी। ये गुफ्तगू पहले बारे उसमें थी। इस आयत करीमा में जो गुफ्तगू आज चल रही है उसमें एक बहस भी आ रही है। बहस का तेवर इतना अनोखा है कि मुस्तशरिकीन और मगरिब इस्लाम पर ये सख्त इल्जाम लगाता है कि कुरान में तो हर जगह काफिरों को कत्ल ही करने के लिए कहा गया है। आप इस तकरीर के इस पहलू को बड़े अच्छे अंदाज में सुनिए और दिमाग में बसा लीजिए, इतना वाजह पहलू कुरान पेश करना भी आ रही है। अस्सल्लाहु बैनकुम व बैन अल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा वल्लाहु क़दीरुन वल्लाहु गफूरुर रहीम। करीब है कि अल्लाह ताला तुम में और उनमें जो उनमें से तुम्हारे दुश्मन हैं दोस्ती करा दे, और अल्लाह कादिर और बख्शने वाला मेहरबान है। फतेह मक्का से पहले का माहौल, फतेह मक्का से पहले एक जंगे बद्र हो चुकी है ना, जंगे बहुत भी हो चुकी है। गजबे अहजाब में मुशरकीन बहुत बुरी तरह से भागे हैं, उनका बस नहीं चल रहा था कि किसी सूरत से मदीने मुनव्वरा की जो इस्लामिक हुकूमत कायम हो रही है इसका तख्ता उलट दे। इसीलिए वो बार बार अटैक कर रहे थे कि इस ईंट से ईंट बजा दो ताकि इस्लाम की जड़ें खत्म हो जाए। अभी फतेह मक्का नहीं हुआ है, फतेह मक्का की तैयारियां चल रही हैं। और देखें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक बात, आज जो तुम्हारे दुश्मन है ना, असल वाह जल्द ही, असा अरबी में आता है, मुस्तकबिल में किसी करीबी बात को जाहिर करते हैं, जल्द ही करीब अनकरीब जल्द ही अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे दरमियान ए मुसलमानों, और ये तुम्हारे दुश्मन जो हैं जो बार बार मक्के से आकर के मदीने पर हमला कर रहे हैं, इनके दरमियान मवद्दत और मोहब्बत पैदा कर देगा। ये देखिए कल का दुश्मन ना तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। अब देखें जंगे बद्र में अबू जहल ने जंगे बद्र में दरअसल उकसाया था लोगों को और क्यादत की थी। जंगे उहुद में अबू सुफियान इब्न हरब हजरत अमीर मुआविया के बाप अभी ईमान नहीं, उन्होंने क्यादत की थी। जंगे अहजाब में वही लीडर बनकर के आए थे, है ना। एक तरफ बाप की ये दुश्मनी और दूसरी तरफ हजरते उम्मे हबीबा जो हुजूर की शरीक हयात है, उम्मुल मोमिनीन हजरत मेरी माविया की बहन है, अबू सुफियान इब्न हर्ब की बेटी उम्मे हबीबा हुजूर के अकद मुबारक की, फर्क जरा बुलाया जाता भाई। तो जल्द ही अल्लाह ताला इन बड़े बड़े दुश्मनों के दिलों में ये मुसलमानों तुम्हारे लिए मोहब्बतें पैदा कर देगा। अबू सुफियान इब्न हर्ब जो बाद में इस्लाम के बहुत बड़े दाई बन गए, सहाबी रसूल हैं, कुछ लोग लाइलमी में या किसी और बुनियाद पर सैयदना मेरे मुआविया हजरत अबू सुफियान इब्न हर्ब हजरत हिंदा जो हजरत मेरे मुआविया की वालदा हैं, जबान जाहिलियत पे इन्होंने बहुत जुल्म उठाया था इस्लाम पर, लेकिन सहाबी होने के बाद भी इनकी शान में बहुत ही नारवा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सख्त मना किया गया है। इस्लाम की शान इससे पहले बयान की जा चुकी कि इस्लाम की खूबी यह है कि जब जिस शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया तो माजी की बड़ी से बड़ी कितनी बड़ी गुना बड़ा गुनाह कितनी बड़ी बुराई रही हो इस्लाम सबको धो देता है। लिहाजा अब उनके शान में सहाबी रसूल होने के एतबार से बड़े अदब के अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। तो कुरान ने कहा कि अस्सल्लाहु बैनकुम व बैन अल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा, जल्द ही ये तुम्हारी दुश्मनियां जो है ना अल्लाह इनके दरमियान दोस्ती पैदा कर दे। امام قرطبی ہے، اس کے حوالے سے بڑی پیاری بات ہے، کہتے ہیں وقد اسلم قوم منهم بعد فتح مکہ وخالطهم المسلمون كأبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام وصهيب بن عمر وحكيم بن حزام، وقيل المودة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان. کہ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان ابن حرب، حارث ابن حشام، سہیل ابن عمر، حکیم ابن حزام جیسے لوگ اسلام قبول کر لیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ام حبیبہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہونے کا یہ اثر دکھایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ابو سفیان ایمان لے آئے. اتنے بڑے اسلام کے دشمن تھے یہ، جس کا ایمان لے آئے. حضرت ام حبیبہ کا واقعہ بھی عجیب ہے، سیرت کی کتابوں میں آیا ہوا ہے. ان کے پہلے شوہر ہیں، ان کا نام ہے عبیداللہ ابن جہش. جب مکہ مکرمہ سے حبشہ یعنی ایتھوپیا کی طرف ہجرت ہو رہی تھی تو حضرت ام حبیبہ اور عبیداللہ ابن جہش دونوں ہجرت کی. عبیداللہ ابن جہش اسلام لے آئے، ام حبیبہ اسلام لے آئے، دونوں خوش خوش حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف ہجرت کر گئے. عبیداللہ ابن جہش حبشہ جا کر کے عیسائی مرتد ہو گئے اسلام سے. ام حبیبہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سمجھایا مگر نہیں مانے، شراب پینے کی عادت ڈالی، شراب پی کر کے مست رہتے تھے، پھر مر بھی گئے. مر گئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبیداللہ ابن جہش کے مرنے کی خبر ملی تو حضور نے جو ہے نجاشی جو بادشاہ تھے حبشہ کے، ان کے پاس پیغام بھیجوایا کہ ام حبیبہ کو میری طرف سے خطبہ دی، یعنی پیغام. تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ نجاشی نے اپنے اصحاب سے کہا کہ یہ بتاؤ تم لوگوں میں سے ام حبیبہ کا ولی کون ہے، اس لیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہی نہیں ہو سکتا ہے، ولی کون ہے؟ تو کہا کہ خالد بن سعید بن عاص. تو حضرت نجاشی نے خالد بن سعید بن العاص سے کہا کہ ام حبیبہ سے اپنے نبی کا نکاح پڑھا دو، ولی کو اختیار، نکاح پڑھا دو تم. چنانچہ انہوں نے نکاح پڑھایا اور نجاشی نے 400 دینار ان کا مہر مقرر کیا اور خود یعنی ولیمہ کیا باقاعدہ. اس کے بعد پھر حضور مدینہ منورہ میں موجود خیبر کی طرف تشریف لے گئے، خیبر فتح ہونے والا تھا، خیبر میں قیام تھا. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حبشہ سے ہجرت فرما کر کے پھر مدینہ منورہ. تو گویا کہ ان کے لیے ایک ساتھ دو ہجرتیں میسر آ گئی، مکہ مکرمہ سے حبشہ اور حبشہ سے مدینہ. یہ اعزاز و شرف حاصل ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مودت اللہ پیدا کر دے گا. چنانچہ فتح مکہ جب ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں ایمان لا چکے تھے، حضرت ابو سفیان کو ایک پہاڑ کے ٹیلے پر کھڑا کر دیا، یہ کھڑے رہ گیا اور منظر دیکھیے بس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شان اور عزت اور تمکنت کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے. حضور نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص حرم مکہ میں داخل ہو جائے گا اس کو امان، جو شخص تلوار پھینک دے، ہتھیار پھینک دے گا اس کو امان، جو فلاں 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 کے گھر میں چلا جائے گا اس کو امان. اسی میں ایک شخص ابو سفیان ابن حرب کے ان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی امان. हाँ अगर जो तलब जो हथियार लेकर के लड़ने लड़ना चाहेगा तो फिर उसको छोड़ा नहीं जाए। खैर ये खड़े होकर के मंजर देखते रहे, दसियों हजार सहाबे कराम हुजूर के साथ तशरीफ ले गए थे मक्का। सवारियां गुजरती रही गुजरती रही गुजरती रही गुजरती रही। अब उस सुफियान को पसीना आ गया, समझ आपने, और उसके बाद उतर करके हुजूर के हाथ में हाथ दिया, अपने इस्लाम का ऐलान किया। बाज लोग कहते हैं कि अबू सुफियान ईमान तो पहले ला चुके थे लेकिन अपने ईमान को छुपाते थे, अल्लाह वाला। बहरहाल फतह मक्का के दिन उनके ईमान का ऐलानिया तौर पर इजहार किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इस्लाम के बहुत अच्छे दाई और इस्लाम के बहुत अच्छे मुजाहिद बनकर के उन्होंने काम किया। खुद अमीर मुआविया भी साथ ईमान लाए हैं, अमीर मुआविया भी फतेह मक्का का ईमान लाए हैं। लेकिन देखें भाई, अमीर मुआविया की खिदमत देखिए कि अमीर मुआविया इस्लामी तारीख के वो अजीम कायद है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के बाद कायदाना सलाहियत उनसे ज्यादा और किसी के अंदर रखी नहीं, इस वजह इतने अजीम कायद। लेकिन वाकया करबला के बाद यजीद की सारी गलत हरकतों का इल्जाम हजरत अमीर मुआविया की जात पर लगा करके लोग उनकी शख्सियत को मजबूर कर देते, ये बात बड़ी ही गलत और बेबुनियाद सी। अजीब का यजीद का अपना मामला है, सैयदना अमीर मुआविया की शख्सियत बड़ी अजीब है इस्लाम। खुद हुजूर ने तो फिर वीडियो वगैरह की रवायतें आई, हुजूर ने खुद उनके लिए दुआ फरमाई, कहा कि ये वही थे रसूल करीम के साले हैं, पूरी उम्मत के मामू हैं। हजरत मौलाए रूम ने मसनवी शरीफ उनको इस उम्मत का मामू लिखा है। हाँ तो ये तो अल्लाह ने मवद्दत पैदा फरमाई, लोग धड़ाधड़ ईमान लाने लगे। फतेह मक्का के बाद ऐसा ईमान का जोर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि सुभान अल्लाह। अब देखें बड़े बड़े लोगों ने ईमान कबूल किया, ये पेशगोई अल्लाह ताला ने पूरी। अब उसके बाद जो मैंने शुरू में भी जुमला कहा था उसकी तौजीह के शुरू में तो बता दिया गया है कि ए ईमान वालों ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, मेरे और अपने दोस्तों को दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ, पहले बता दिया। आगे की आयत करीमा का तेवर के ला यनहाकुम अल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फिद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रहुम व तुक़सितू इलैहिम इन अल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह तुम्हें उनसे मना नहीं करता जो तुमसे दीन में न लड़े और तुम्हें तुम्हारे घर वालों से न निकाला कि उनके साथ एहसान करो और उनसे इंसाफ का बर्ताव करो, बेशक इंसाफ वाले अल्लाह को महबूब है। ये दोस्ती किन से मना की गई है, मवालात और मवद्दत किन काफिरों से मना की गई है, किन काफिरों से ये हुक्म दिया गया कि उनके साथ मोहब्बत का बर्ताव नहीं करो, उन काफिरों से कि जो जिन्होंने तुमको तुम्हारे घरों से निकाला है, तुमसे दुश्मनी की है, तुमको कत्ल किया है, तुमसे मुखालिफतें की हैं। ऐसा कोई काफिर होगा जो मुसलमानों से दुश्मनी करे, मुसलमानों को कत्ल करे, मुसलमानों की बेइज्जती चाहे, इस्लामी सल्तनत की जड़ें उखाड़ने की कोशिश करे, उनके साथ मना किया गया है। लेकिन अगर ऐसा कोई हो कि जो मुसलमानों के साथ दुश्मनी नहीं करता है, अपने मजहब पर कायम है, काफिर है अपने मजहब पर कायम, बुतों की पूजा करता है अपने मजहब पर कायम है, शिर्क व कुफ्र करता है अपने मजहब पर कायम है, तो उनके साथ मवालात और मोहब्बत आपसी ताल्लुकात रखने की ममानियत नहीं की गई है, बल्कि उनके साथ तो कुरान ने कह दिया कि अंतबर रूह व तुकसितू इलैहिम, उनके साथ एहसान करो। ये देखिए काफिरों के साथ एहसान करो, उनके साथ हुस्ने मुआमला करो। ये देखिए मुस्तशरकीन, मुस्तशरकीन का मतलब होता है मगरबी जहन रखने वाले लोग जो इस्लाम के खिलाफ लिखने में बड़े माहिर होते हैं, वो हमेशा उन आयतों को कोट करते हैं जिन आयतों से इख्तलाफ की बुआ पाती है, लेकिन उन आयतों को पेश नहीं करते हैं जिन आयतों के जिम्न में कुरान में एक निजाम मुआशरत एक सोशल लाइफ गुजारने का तरीका बताया है, उसको नहीं पेश करते। इससे ज्यादा वाज़ह सबूत कुरान में और क्या हो सकता है कि साहब सराहतन कह दिया कि मवालात मोहब्बत एक दूसरे के साथ ताल्लुकात उन काफिरों से मना किए जाएंगे जो तुम्हारे दुश्मनी का इजहार कर रहे हो, तुमको खत्म करना चाहते हो, اسلامی سلطنت مٹانا چاہتے ہو، اسلام کا نقصان کرنا چاہتے ہو، لیکن اگر وہ اپنے مذہب پر قائم ہے اسلام کی کوئی دشمنی نہیں کر رہا ہے، تمہارے قتل کے در پہ نہیں ہے، اپنے سے اپنا معاملہ رکھتا ہے خالی بس، وہ تو ان کے وہ نہ صرف باقی رکھا جائے گا بلکہ کہا گیا کہ ان تبروہم مبرات، احسان اور بھلائی کرنا، وَتُقْسِطُ إِلَيْهِمْ، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، دونوں باتیں دی گئی. یہاں یہ کہا کہ سورہ براء شریف میں صحیحاً صراحتاً فرما دیا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ چاہتا ہے، تمہارا پڑوس چاہتا ہے، تم سے محافظت چاہتا ہے، تو اس کو پناہ دو اور اس کو اللہ کا کلام سناؤ، ہو سکتا ہے قبول کر لے، پھر اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو اپنے پروٹیکشن میں. یہ دیکھیے یہ بھی قرآن کا رکن. تو اب مشرقین یا اسلام کے خلاف لکھنے والے جو ہندو ذہنیت کے لوگ ہیں، جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، ان کو صرف قرآن کی دو تین آیتیں ملتی ہیں کہ فقط المشرقین حیث وجدتموہم، مشرقوں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو. یہ آیتیں وہ نہیں پڑھتے، یہ آیتیں نہیں پڑھتے. اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ کسی بھی اسلام کے کسی بھی کام کے پیچھے کوئی تاریخی ایک حیثیت ہوتی ہے، ان تاریخی حیثیت کو نظر انداز کر دیا جائے گا تو بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے. فقط المشرقین حیث وجدتموہم، مشرقوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو. کیوں قتل کر دو بھائی؟ قتل کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے، تمہارے وطن سے تم کو نکالا ہے، تم کو قتل کیا ہے، تمہارے املاک ضبط کی ہیں، تمہاری پراپرٹیز کو نقصان کیا ہے، تمہارے بچوں کو قتل کیا ہے، تمہارے غریبوں کو مارا ہے. تو جب انہوں نے مارا تم بھی مارو، سمجھ آ رہا ہے نا؟ جب انہوں نے مارا تم بھی مارو. لیکن اگر ایسا کافر کہ جس نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہے، انتبروہم وتقسطوا الیہم، اس کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ اس کے ساتھ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دے. دیکھ پھر آگے آتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو اس قسم کا کام کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ محبوب ہے. ایسا نہیں کہ کافر سے اس قسم کی لین دین تعلقات رکھنے سے اللہ کی بارگاہ میں تم دشمن ہو جاؤ گے، اللہ کی ناراضگی نہیں. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں کتنا کھلا ہوا اشارہ ہے. اس آیت کو دماغ کے اندر رکھ لیجیے گا، سورہ ممتنہ کی آیت نمبر 8 ہے. ہاں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم اولئک الظالمون. جسٹ اپوزٹ اس کا مفہوم اس آیت پہ ہے. ہاں اللہ تمہیں ان سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے، نمبر ایک، یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، نمبر دو، یا تمہارے نکالنے پر مدد کی، نمبر تین، کہ ان سے دوستی کرو، اس سے منع کرتا ہے. جن لوگوں نے تم کو مارا، تمہارے گھروں سے نکالا، تمہاری پراپرٹی ہضم کر لی، تمہاری ملکیت کو قبضے میں لے لیا، تمہیں نقصان پہنچایا، ان لوگوں سے اللہ منع کرتا ہے کہ یہ تمہارے دشمن، ان سے دوستی نہیں کرنا. بات سمجھ ہو گئی؟ ایک دم کلیئر ہے. اگر کسی شخص نے ایسے ماحول میں ان سے دوستی کی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ظالم ہے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. دیکھ رہے ہیں. اچھا صاحب، واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی تھی، ان کا نام تھا، اس کا نام تھا قتیلہ. قتیلہ سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی تھی. حضرت اسماء حضور سیدنا صدیق اکبر کی وہ جانشار بیٹی ہیں کہ ہجرت کے موقع پر انہوں نے بڑا زبردست کام انجام دیا ہے. تو یہ قتیلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی تھی. جب آیت کریمہ اوپر کی اتری تو آپ نے قتیلہ کو طلاق دی. الگ پھر کیا ہوا، ایک بار قتیلہ مدینہ منورہ حضرت اسماء اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، اولاد بہرحال اولاد ہوتی ہے، और अपने साथ कुछ तोहफे तहायफ लेकर के आए, तो हजरत असमा ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। गौर का मकाम है, हजरत असमा ने अपनी माँ से मिलने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं मिलूंगी, इसलिए कि मैं मुसलमान हूं, तुम काफिर हो, इस बुनियाद पर मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं, अब जाओ। और उसके बाद फिर हुजूर के पास आकर के पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरी माँ कुतैला आई हुई है, मुझसे मिलना चाहती हैं, कुछ तोहफे तहायफ लेकर के आई हैं, क्या मैं मिल सकती हूँ? अब रसूल अकरम का जवाब बोला जा रहा है, अल्लाह कहते हैं कि अन्ना अबू बकर सिद्दीक तल्लका इमरात कुतैला फिल जाहिलिया, जाहिलियत के जमाने में सिद्दीक ने अपनी बीवी कुतैला को तलाक दे दी, और वह या उम्मु अस्मा बिनत अबी बकर, वो अस्मा बिनत अबू बकर की माँ। फकदिमत अलैहिम फिल मदीनत अल्लती कानत फीहा अल मुहादरत बैन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बैन कुफ्फार कुरैश, ये उस जमाने में आई मदीने मनवरा, जिस जमाने में कुरैश रसूल करीम के दरमियान चल रही थी, ठनी हुई थी कस्बे, बहुत सख्त इख्तलाफ चल रहा। तो फअहदत इला अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक उर्तन व अशिया, कानों की बाली लेकर के आई थी और कुछ चीजें थी अपनी बेटी के लिए, पहले बेटी के पास जा रही हूँ तोहफा दूंगी, तोहफे दूंगी। फकरियत अन तक़बला मिन्हा हत्ता अतत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़रत ज़ालिका लहू, तो उन्होंने इसको नापसंद किया और हुज़ूर के पास आकर के वाक़या सुना दिया। जब वाकया सुनाया तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत असमा बिनत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस अमल की वजाहत करते हुए जवाज का हुक्म उतारा और कहा कि ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीन लम युकातिलूकुम फिद्दीन, हाँ, वो लोग जिन लोगों ने मुसलमानों से जंग नहीं की है, ज्यादती नहीं की है, दुश्मनी नहीं की है, वो अपने मजहब पर या अपने मजहब पर इन लोगों से मवद्दत मोहब्बत मवालात लेन देन में कोई हर्ज नहीं है, ये अस्मा जाओ जो तुम्हारी माँ लेकर के आई उसको कबूल कर लो।
हाँ
देख रहे हैं, ये आयतें लोगों को नजर नहीं आती है, हदीसें लोगों को नजर नहीं आती, ये नजर नहीं आती है इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी करने वालों, कबूल कर लो, कबूल कर लिया, खुश हो, ये है इस्लामी निजाम। फिर इस सिलसिले में उसके बाद फिर बात आई कि हाँ, उन लोगों को सख्ती के साथ मना किया गया है कि जो इस्लाम से दुश्मनी करते हैं, अब उनके साथ कोई मवालात नहीं। सैयदी आला हजरत के जमाने में जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर रखा था, तो सभी लोगों को मालूम है कि 1857 में बड़ी खूनरेज झड़प हुई थी मुसलमानों से और अंग्रेजों से, हजरत अल्लामा फजल खैराबादी, मुजाहिद हुर्रियत और अहमदुल्ला मद्रासी मरहूम, यही दो लोग क़यादत कर रहे थे। आप ही ने सबसे पहले फतवा दिया था कि अंग्रेज हमारी जमीन पर गासिब और काबिज हैं, इनको निकालना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। चुनांचे दिल्ली में बड़ी जबरदस्त जंग हुई, मुसलमान का नाकाम हो गए, और उसके बाद जिन जिन लोगों के बारे में शुबा होता था उनको सीधे पकड़ के सूली दे दिया। अल्लाह फजल खैराबादी जो अपने वक्त के इतने जज्जिद आलिम थे, इतने जज्जिद आलिम थे कि अल्लाह अकबर, बहुत बड़े आलिम थे, अपने वक्त के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, समझा? एक बार कहने लगे कि अगर अफलातूनी फरमाने लगे कि अगर बुकरात या अफलातून भी आ जाए तो उसको फलसफा पढ़ा दूंगा, ये तरीका फरमाएंगे उसको फलसफा पढ़ा दूंगा, मंतिक में तो जवाब थी। फिर कहने लगे मगर मुझको फिकह नहीं आती, फिकह मसले मसाए, तो फिकह हनफी की किताब है हिदाया नाम, हमारे मदरसों में पढ़ाई जाती है और मसले मसाइल की बड़ी अच्छी किताब, तो वो पढ़ाने बैठे तो उसमें सबसे पहला चैप्टर है किताबुत तहारात, पाकीजगी का बयान। तो तो लफ्ज अत्तहारात पर एक हफ्ता तक वो बोलते रहे, एक हफ्ता तक लेक्चर दिया सिर्फ अत्तहारात पर। तो किसी ने कहा कि हुजूर आप तो कह रहे थे कि अगर बकरात या अफलातून आ जाए तो फलसफा पढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे फिक्र नहीं आती, और एक हफ्ता से आप अत्तहारात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। फरमाया हाँ, मुझे इमाम अबू हनीफा वाली फिक्र नहीं आती। फरमाया मुझे इमाम अबू हनीफा वाली फिक्र नहीं आती, और बकरात और सुकरात पढ़ाने वाला फलसफा आता है, वाकई बहुत बड़ी किताबें लिखी हुई। उन्हीं के जमाने में इस्माइल दहलवी से कई मुबाहसे हुए थे। इस्माइल दहलवी ने कहा था कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, इम्कान किज़्ब का मसला उठाया था, उस पर किताब लिखी उन्होंने। फिर उसके बाद एक और मसला उठा कि हुजूर की तरह से पैदा हो सकता है, हुजूर की तरह का पैदा हो सकता है, इस पर गुफ्तगू हुई। फिर उस पर लिखा उन्होंने, इम्तिनाउ नज़ीर किताब है, गालिब से इनकी बड़ी दोस्ती थी, अल्लाह फजलत से गालिब की बड़ी गहरी दोस्ती थी। अल्लाह फजलत खैरवादी रहमतुल्लाह ताला अलैह गालिब के अशआर की इस्लाह करते थे और समझाते थे कि गालिब ये सब क्या लिख रहे हो, तुम्हारे कोई समझेगा। चुनांचे गालिब ने एक मसनवी लिखी है, इम्तिनाउ नज़ीर यानी हुजूर जैसा होना मुहाल है, ये अकीदा है। ये तारीख का चूंकि हिस्सा इसे बता रहा हूं, गालिब ने खुद एक मसनवी लिखी है कि हुजूर जैसा होना मुहाल है, न पहले कोई हुआ है, न हुजूर के जमाने में कोई, न हुजूर के बाद क्या वक्त कोई हो सकता है, और यही अकीदा है नस्बत जमात का। और लिख करके गालिब ने अल्लाह फजल खैराबादी के सामने दिखलाया, तो उसमें लिखा था गालिब ने कि अगर वो कासिम नानौतवी का जो अकीदा है कि जो है हुजूर के बाद भी अगर कोई नबी आ जाए तो हुजूर की खातमियत में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अकीदा हो गया। इसी अकीदे की बुनियाद पर कादियानी ने नबूवत का ऐलान किया था। तो गालिब ने इसी तरह की फिक्र जाहिर की थी कि अगरचे हर जमीन में खात्म हो जाओ फिर भी हुजूर की खातमियत पर फर्क नहीं आएगा। लिख कर खिलाए तो अल्लाह फजल खैराबादी ने फरमाया कि क्या बक रहे हो तुम, ये क्या बक रहे हो, अरे तुम साथ ही जमीन की बात कर रहे हो, अगर जमीनों पर जमीनें मखलूक पर मखलूक पैदा हो जब भी हुजूर सबकी खातिर है, तब जाकर के फिर जाकर के गालिब करते शेर की सलाह। आजकल अशरफिया में उसकी दो किस्तें आई हैं। तो ये सूरत हाल है, अगर अंग्रेजों ने इस्लाम पर हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा करने के बाद बड़ी बड़ी ज्यादती की था, मुसलमानों को तो ऐसा कत्लेआम कराया कि अल्लाह अल्लाह लाशें ऐसे दरख्तों पर लटकी। हमारे फैजाबाद में मुजाहिद शहीद कुर्रियत थे, शहीद अशफाकुल्ला, उनको कत्ल करने के बाद तकरीबन 14 दिन तक उनकी लाश को दरख्त पर लटका दिया था। टीपू सुल्तान के बाद रहमतुल्लाह के बाद सबसे बड़ा जो टक्कर लिया है अंग्रेजों से अल्लाह फजल खैराबादी और उनके हमनवा अहमदुल्ला मदरासी। लेकिन अब देखें तारीख लिखने वालों का झूठ कि जो लोग अंग्रेजों के इशारे पर चलते थे, उनका खाते थे, उनका पीते थे, उनको हिंदुस्तान का मुजाहिद लिखा गया है, और जिन लोगों ने जंग करके अपनी जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दी, इसी एवज में अल्लाह फजल खैराबादी को जजीरे अंडमान जो उस वक्त काला पानी कहा जाता था, वहां का पानी खारा होता था, वहां भेज दिया गया, वहां आप रहे और वहीं शहीद वहीं इंतकाल किया, वहीं आपको मजारे पार जजीरे अंडमान वहां भी। तो जितने मुजाहिद हुर्रियत थे उनको बागी करार दे दिया गया, और जितने अंग्रेजों से दोस्ती करने वाले थे हुकूमत बरतानिया से उनके इशारे पर चलने वाले को, आप देखो चाहे पाकिस्तान की तारीख पढ़ लो चाहे हिंदुस्तान की तारीख पढ़ लो, उन्हीं को सबसे बड़ा मुजाहिद आजादी करार दिया गया है। ये तारीख का बहुत बड़ा आलमिया है। क्या अल्लाह हिदायत के दुआएं ही रह गई और क्या हुए, है ना। तो ये दोनों आयतें इस बात को वजाहत कर रही हैं कि किन के साथ दोस्ती यानी मवालात मना है और किन के साथ मवालात मना नहीं है। वो लोग जो दीन के दुश्मन हो, आपके दुश्मन हो, आपकी प्रॉपर्टी के दुश्मन हो, आपका नुकसान चाहने वाले हो, इस्लाम का नुकसान चाहने वाले हो, उनके साथ ये तो तबई मसला है भाई। आप देख लो ये तो कुरान ने एक मसला बयान फरमा दिया। आपस में देख लो, अगर आप दो आदमी बिजनेस कर रहे हो और अब अगर ऐसी सूरत में कोई शख्स दुश्मनी के दर पे हो, हमें कह रहा था कि हमारी आपस में दुश्मनी होती है, दो आदमी बिजनेस कर रहे हैं और लेन देन में कोई बात बिगड़ जाती है तो क्या दोनों दोस्त रह जाते हैं? अब आप देख लीजिए, क्या दोस्त रह जाएंगे दोनों? वो ऐसी दुश्मनी होगी साहब, उसका चेहरा देखने का वारा नहीं करेगा, इसका चेहरा देखने का वारा।